आपने कभी साइकिल देखी होगी बचपन में, यहाँ भी लोग चलाते हैं। आप देखिए पूरी साइकिल मौजूद है, लेकिन एकदम चलने से रुक गई। आप गौर व फिक्र करें, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। फिर आप किसी भी मर्द को दिखाते हैं, वो कहते हैं अरे अल्लाह की बंदी, इसकी जो चेन है ना वो पहिए के ऊपर से उतरी हुई है। एक चेन जब उस एक्सेल के ऊपर से उतर के साइड पे आई, ये टेढ़ी हो गई, कुछ फंस गया, कोई पत्थर आ गया, तो वो साइकिल चलनी रुक गई। बस क्यों? कि उसका एक्सेल जो है वो हट गया। इसी तरह हम इंसान इस दुनिया में भेजे गए इसलिए कि अल्लाह के इर्द गिर्द घूमे, अल्लाह को पुकारे, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहना क्या है कि सबसे कटकर रब के बन जाओ, रब को अपनी यादों में बसा लो, जियो तो उसके लिए, मरो तो उसके लिए, प्यार करो तो उससे, तुम्हारी जिंदगी वफा करे तो उसके लिए, अलहादी मानो तो उसको, राहबर मानो तो उसको, दुख में गम में पुकारो तो उसको, मदद के लिए पुकारो तो उसको, कोई दुनिया की नेमत चाहिए तो उसको पुकारो, तुम्हें जहां तन्हाई का एहसास हो या रब भी कह के पुकारो। लेकिन जब एक इंसान रब को पुकारने की जगह इधर से उधर भटकता है ना, तो वो चलती साइकिल की तरह रुक जाता है। आज इंसानियत की गाड़ी रुकी हुई है क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह को फोकस बनाए बगैर, इस दुनिया को फोकस बनाए। मैं आप देखिए कि जब अल्लाह की ज़ात ज़रा सी पीछे होती है, ये नहीं मैं कह रही कि हम में से सबकी ज़िंदगी से अल्लाह निकल गया, नऊज़ुबिल्लाह, कभी भी नहीं निकला। मुसलमान की ज़िंदगी से लफ्ज़ अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल ही नहीं सकता। शराब में धुत मुसलमान को भी पूछेंगे ना, सुनाओ रब कौन है, तो वो कहेगा अल्लाह। उससे भी पूछेंगे हादी कौन है, राहबर कौन है, तो कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इस वक्त मुसलमान डी ट्रैक हुआ हुआ है, रास्ते से उतर गया। जिस तरह आप देखिए कि एक रोड सीधी जा रही है, जाने का रास्ता है और एक आने का रास्ता है। आप तसव्वुर में लाइए कि जाने के रास्ते से कोई अंदर घुस रहा हो, ऑपोजिट वे से आए, तो क्या होगा? बहुत बड़ा हादसा होगा। लिखा हो कि यू टर्न मना है, राइट टर्न मना है, और आप ले लें, तो ऑपोजिट साइड से आती हुई गाड़ियों से टकराने का खतरा है ना। बीसियों मिसालें मौजूद हैं। जब आप एग्जिट की बजाय एंटर और एंटर की जगह एग्जिट पे घुसेंगे तो तबाही है। आज इंसानियत के साथ यही हुआ। अल्लाह ने क्यों कह दिया, फमन तबी हुदाया, जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा, फला या दिल्लू, वो गुमराह नहीं होगा, वला यशका, और कभी भी बदकिस्मत नहीं होगा। सूरह तौहा की आयत 123 है ये। क्या मतलब कि तुम लॉस्ट नहीं होगे, फटकोगे नहीं। आज इंसानियत लॉस्ट है। उसका ख्याल है कि सुकून शराब में है, रूह की ग़ज़ा गाने में है, गमों का इलाज ड्रामे और फिल्मों में है, और नफ्स की खुशी क्या है कि नाचो खुद को खुशी मनाओ, लोगों में बड़े बनो, अच्छे कपड़े पहनो। इंसानियत ने आज ये सब कुछ करके देखा, खुश नहीं है। किसी बड़े मशहूर इंसान से जाके पूछ के देख ले, सुनाओ तुम्हारी ज़िंदगी में क्या है, तो वो क्या कहेगा, सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। शोहरत की बुलंदियों पे फायज़ लोग जो है ना, वो अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि हम भटके हुए लोग हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ नहीं है जिसको लाना है। तो वजह क्या है कि वो हिदायत के रास्ते से उतर कर गुमराही के रास्ते पे चले गए। अल्लाह सुब्हान तआला में कहता है कि पलट आओ, करो क्या, इतनी जो बातें सुन ली, ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी है, तो आप कहते हैं डॉक्टर साहब इलाज तो बता दें, करना क्या है? अल्लाह ताला कहता है मेरी तरफ आ जाओ, कम ऑन, आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा, मैं तुम्हें थाम लूँगा, मैं तुम्हें सुकून दूंगा, तुम्हें बरकत दूंगा, तुम पे अपनी रहमतें करूँगा, तुम दुनिया में इज्जत और खुशी पाओगे, आखरत में नेमतों भरी जन्नत पाओगे। खुश करो, सोचो, बैठ के सोचो, अकेले सोचो, दूसरों से सोचो कि इस दुनिया में तुम्हें सुकून, खुशी, इत्मीनान और मनचाही ज़िंदगी चाहिए ना, तो उसका रास्ता मेरी ये किताब है जिसको अल कुरान कहते हैं। हम मुसलमान इस चीज़ में कितने खुशकिस्मत हैं, दुनिया की सब किताबों से बेहतरीन किताब, इल्हामी किताबों में इज़्ज़त और शर्फ वाली किताब कुरान पाक है। अगर सिर्फ मैं एक एक लफ्ज़ में इस किताब की खूबियाँ बोलूँ ना, तो आपका कम अज़ कम एक सफ़ा भर जाएगा। इज़्ज़त और शर्फ वाली किताब, अज़मत वाली किताब, फजीलत वाली किताब, खैर और बरकत वाली किताब, हिदायत वाली किताब, हिकमत से लबरेज़ किताब, शक और शुबे से बालातर किताब, हक और बातिल में फ़र्क करने वाली किताब, जहालत से अंधेरों में निकालने वाली किताब, तौहीद के नूर से सीनों को मुनव्वर करने वाली किताब, ईमान लाने वालों को जन्नत की खुशखबरियां देने वाली किताब और इसका इनकार करने वालों को जहन्नुम की खबर सुनाने वाली किताब, इस बनी नौ इंसानियत पर अल्लाह की सबसे बड़ी किताब नेमत किताब कुरान है। मेरा आधा सफ़ा तो इन जुमलों से ही हो गया होगा। अल्लाह ताला कहते हैं, वाइन तउद्दु नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, गिन ही नहीं सकते। इसी तरह मैं बेबसी महसूस करती हूँ कि इस किताब की खूबियों को अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो मैं कर नहीं सकती, सारी नहीं करूँगी, कोई दो चार कर दूँ तो शायद आप खुश हों कि बहुत कुछ है। आप देखिए, ये कदर वाली किताब है। जिस रात में ये किताब उतरी, अल्लाह ताला ने उस रात को लैलतुल कदर कह दिया। सूरत कदर की पहली तीन आयतें पढ़ लें, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतुल कदर व मा अदराका मा लैलतुल कदर लैलतुल कदर खैरु मिन अल्फ़ शहर। अल्लाह कहते, हमने इस किताब को कदर वाली रात में नाजिल किया, और तुम्हें क्या पता कि कदर वाली रात क्या है? वो एक रात 1,000 महीनों से बेहतर है, यानी 83 ईयर, लिख लें, 83 साल की इबादत एक रात की इबादत को कह दिया। इतनी बड़ी किताब, वजह क्या है कि उस रात वो किताब नाजिल हुई कि जिसको ज़िंदगी में ले आए तो अल्लाह ताला बंदे की कदर की इंतहा करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस किताब की खिदमत में क्यों लगाई, कभी आपने सोचा? मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आजकल हम सुबह में सीरत पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सिस्टर बुशरा, फ़ायज़ा और उल्फत जी, ये तीन लोग यहाँ गवाह हैं कि हम उस सीरत को पढ़ते और पढ़ाते हुए महसूस क्या कर रहे होते हैं। इतनी खूबसूरत ये किताब है, इतना प्यारा नबी अल्लाह ने हमें दिया। आप उस इंसान को तो क्या कहेंगे कि जिसके घर में चिराग हो और वो अंधेरे में ठोकर खाकर गिरे और चोट लगे और मर जाए, क्या कहेंगे उसको? किसी के घर में चिराग हो और उसको पता ही ना हो, और एकदम अंधेरे में सांप को रस्सी समझ के पकड़े और वो सांप उसको डसे और वो मर जाए, क्या उम्मत मुस्लिमा का आज ये हाल नहीं है? हमारे एक बड़ा मारूफ जुमला है, चिराग तले अंधेरा। वाकई अगर आप छोटा सा चिराग जलाए ना, तो बिल्कुल उसके नीचे तो अंधेरा होता है, साइंटिफिकली उसकी एक वजह है, लेकिन उसके इर्द गिर्द थोड़ी थोड़ी रोशनी फिर फैलती जाती है। क्या आज उम्मत मुस्लिमा का ये हाल तो नहीं है? घर का नबी, घर की किताब, गैरों तक तो हम पहुँचेंगे ना, ये जितने घर इर्द गिर्द है हमारे, ये तो हमारा मुंह देख रहे हैं। ठीक है, चिराग हमारे घर में हमने छुपाया हुआ है, कपड़े डाले हुए ऊपर, लेकिन आप देखिए कि जब ये किताब हमारी ज़िंदगी में आती है, अंधेरों से रोशनी। कितना बदबخت है वो शख्स जो क़यामत के दिन इस बात पर रोए कि अल्लाह थी चिरा रोशनी घर में, याद नहीं था पड़ा हुआ है। कभी ऐसा आपके साथ हुआ होगा? घर में चीज़ होती है, वक्त पे याद नहीं आती और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, फिर बाद में अफसोस होता है, गम ही नहीं जाता, हाय हाय घर में पड़ी थी, काश मैं देख लेती। कितनी बेइज्जती महसूस करते हैं अगर मेहमान सिर्फ ये कह दे कि चाय की प्याली बना दे, पता है घर में है पत्ती नहीं मिल रही, कहीं अंदर रखा रह गया डब्बा, क्या करें, अफसोस, कहीं जा ही नहीं सकते, फिर बड़ी माजरा से कहेंगे कि चाय की पत्ती ख़त्म हो गई। वैसे तो हमारे यहाँ आजकल ये मुमकिन ही नहीं, हमने तो साल साल का सामान घर में ला ला के भरा होता है, लेकिन आप सोचिए उस वक्त को जब बाद में फिर आपको चाय का पूरा एक डिब्बा अंदर पेंट्री से दिख जाए, तो आप कहेंगे हाय उस दिन बेइज्जती हो गई, हाय मेहमान ने क्या सोचा होगा, इसके घर चाय की पत्ती भी नहीं है। क़यामत के दिन हम मुसलमानों के साथ कहीं ऐसा ही मामला ना हो, हम अल्लाह के नबी को क्या मुंह दिखाएंगे? आपने जिस किताब के साथ ज़िंदगी लगा दी, हम उसके साथ चंद घंटे लगाने को बोझ समझते हैं। ऐसे मिन्नतें, ऐसे तरले और ऐसी न्यासमंदियाँ कि खुदा के लिए इस किताब को पढ़ लो, खुदा को किताब को पढ़ लो, हम कहते हैं नहीं सॉरी आई एम बिज़ी, आज नहीं, कल, कल नहीं परसों, बस शादी पे जाना है, मेहंदी पे जाना है, उपटन पे जाना है, बस बच्चे का स्कूल का वक्त, नहीं खाना पकाना। आप सब एक लंबी लिस्ट बनाएं उज़र की। अमूमन जो फी ज़माना हम मुसलमान इस किताब से दूर रहने पे रखते हैं, बच्चे 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 बच्चे, सच बताइए, गोद का बच्चा मैं कहती हूँ जितना बेज़र्र होता है, टांगे लग जाएं तो बच्चे तो संभलना ही नहीं आते, लेकिन बचपन से एक बच्चे को हम बुनियाद बनाते हैं। बल्कि उससे पीछे प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट हूँ, आंखें बंद होती हैं, नींद आती है, फोकस नहीं हो सकती, शर्म आती है लोगों में बैठते हुए, बच्चा होगा तो आऊँगी, हो गया अब क्या मसला है, ये रोता बहुत है, अब क्या मसला है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, होते होते उस बच्चे के स्कूल आने के वक्त हो जाता है, अब इसके स्कूल का वक्त, अब इसको बेबी सिटिंग में लेना, इसको डे केयर में छोड़ना, आप देखिए कि वो बच्चा बड़ा भी हो जाता है ना, तो हम उस बच्चे का नाम लेके बाज़ुबा किताब से दूर है, हालांकि क़यामत के दिन हमारा एक बच्चा भी इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेगा कि मेरी माँ मेरी वजह से किताब से दूर रही। क्या बच्चों की माएँ खाती हैं, पीती हैं, शादियों में जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, जॉब्स करती हैं, बाजारों में जा जा के काम करती हैं, सब करती हैं, कौन सी बच्चे वाली माँ है जो बिल्कुल घर में बैठ गई है और काम भी नहीं करती घर के, हर वक्त बच्चे को गोद में लेके बैठती है, और अगर कोई करती है तो ज़रा सोचे वो बच्चे को बना क्या रही है। कभी आप पहले दौर की माँ को देखें कि बच्चों को रुला रुला के घर के काम माएँ करती थी, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था, सौ सौ रोटियाँ पकाती थी औरतें, मैं खुद ऐसी बहुओं को जानती हूँ, बहुत बड़ा ख़ानदान था, नंदे और जो और घर का आना जाना, और दो भाभियाँ थीं आपस में देवरानी जेठानी, तो वो अक्सर बताती थी, कहती हम दोनों तवे रखती हैं, बैठते दो तवे होते हैं, बैठे रोटियां बनाते और बातें करते में एहसास ही नहीं हो रहा कुछ, तो कहती थी हम कई दफ़ा बाद में गिनते थे, हमने 100 से ऊपर रोटियां बनाई हैं और बनती जाती हैं और अंदर जाती जा रही हैं, खा रहे हैं घर वाले सारे खानदान, आखिर में उन बहुओं की बारी आएगी कहीं कि वो बच गया तो खा लेंगी, ये आम बात है, कपड़े धोती हैं, रो रहे हैं बच्चे, कर रहे हैं, कौन सा काम नहीं करती थी माएँ, और उनके 10 10 बच्चे होते थे। आंटी जी आपके कितने बच्चे थे? खैर से 4 बच्चे आपके, काम करते थे बच्चों के साथ, मशीनें थी उस वक़्त कोई कपड़े धोने की, बर्तन धोने की नहीं थी ना, और आप इनसे, मैं आपको सच कह सकती हूँ, ये जो बैठी हैं और इनकी बेटी बैठी है ना इधर, इनकी दौर में जितने बच्चे थे उस वक़्त बच्चों को पालना और उनके काम ज़्यादा करने पड़ते थे जितने आपके बच्चे थे, और अब आपकी निस्बत अगर आजकल आप में से, आपकी बच्ची है छोटी सबसे शायद इधर, अब दिन ब दिन कितनी सहूलतें हैं, पैम्पर होते थे आज से पहले, सुबह उठ के माएँ शुरू होती थी बच्चों के पोटले धोने, कहाँ कहाँ रख रख के सुखाती थी सर्दियों में कि बच्चों को रात को फिर बांध के सोना है, कोई डब्बे के दूध या बेबी फूड या फलां फूड कोई होता था? ये तो हमने अपनी जान को खुद रोक लगा, इतनी सहूलतों के बावजूद कहते हैं बच्चे बच्चे बच्चे, ये पहला उजर रखा है मैंने आपके सामने, इस बात को सुन के जो भी इस बच्चों वाला इसको सुन रहा है और इस किताब से बच्चों के जैसे दूर है ना, तो वो सोचे कि ये बच्चे मेरे लिए आंखों की ठंडक बनेंगे। देखिए आप नमाज छोड़ दें और बच्चे को पालती रहें, क्या बच्चा आपके लिए खुशी का सबब बनेगा? कभी भी नहीं बनेगा। नेमत देने वाले ने नेमत दी और हम उस बच्चे के साथ अपने आप को लगा कर नेमत देने वाले को भूल गए, आप इसको क्या कहेंगे? और क्या उजर होता है दूसरा हमारा,